सोमवार 9 मई दिन भर के साथ मैं निखिल रंजन आप सबको नमस्कार। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों के वोट डालने पर रोक, शक्ति परीक्षण से पहले जोश में हरीश रावत का खेमा।
आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और कल भी हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है।
गया में छात्र आदित्य सचदेव की हत्या को लेकर दिल्ली तक गूंजा शोर, लेकिन मुख्य आरोपी रॉकी यादव पुलिस की पहुंच से अब भी दूर। प्रधानमंत्री की डिग्री लेकर सामने आई बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा फर्जी है डिग्रियां।
जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है, फोर्ज्ड है। अमित शाह कोई भगवान नहीं है, अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तराखंड विधानसभा में कल होने वाले शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक वोट नहीं दे पाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की ओर से दाखिल याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बागियों ने कोर्ट से शक्ति परीक्षण में वोट देने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने आज सुबह कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया था। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में अभियान चला रहे लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूरोप नेटो की वजह से सुरक्षित है, यूरोपीय यूनियन के कारण नहीं। इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूरोपीय यूनियन से अलग होना शांति के लिए खतरे की स्थिति बना सकता है। ब्रिटेन में 23 जून को जनमत संग्रह होना है, इससे तय होगा कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहेगा या नहीं रहेगा। उत्तर कोरिया ने बीबीसी संवाददाताओं की एक टीम को निकाल दिया है। निकाले जाने के पहले इस टीम में शामिल संवाददाताओं पर तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया और उन्हें हिरासत में रखा गया। इस टीम में रिपोर्टर रूपर्ट विंगफील्ड हायस के अलावा एक कैमरामैन और एक प्रोड्यूसर शामिल हैं। उत्तर कोरिया से निकाले जाने के बाद ये टीम चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गई है। उत्तर कोरिया में 8 घंटे की हिरासत के दौरान रूपर्ट से पूछताछ की गई और उन्हें एक माफीनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। रूपर्ट ने बीजिंग पहुंचने के बाद कहा, फिलहाल मैं कोई बयान या इंटरव्यू नहीं देने जा रहा हूं। हम बाहर निकलकर बहुत खुश हैं। अब हम जाएंगे और अपने अधिकारियों से बात करेंगे। हम वहां से बाहर आकर राहत महसूस कर रहे हैं। ये थे बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं। पार्टी की 36 साल बाद हो रही कांग्रेस में इस फैसले की जानकारी दी गई। किम जोंग का परिवार 3 पीढ़ियों से उत्तर कोरिया की कमान संभाल रहा है। वो साल 2011 में अपने पिता की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर वर्नर फेमेन ने इस्तीफा दे दिया है। फेमेन ने कहा है कि वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पूरे समर्थन के बिना अपने पद पर नहीं बने रह सकते। मई दिवस की रैली में पार्टी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। जनमत सर्वे जाहिर करते हैं कि आगामी चुनाव में फेमेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन को फ्रीडम पार्टी के हाथों हार झेलनी पड़ सकती है। पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में उनकी पार्टी पिछड़ गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। आज शुरुआत करते हैं भारत से। उत्तराखंड के सियासी संकट का एक अध्याय तो फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा। इस बीच आज दिन भर इस मुद्दे पर देहरादून और नैनीताल से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी बनी रही। सुबह नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागियों की सदस्यता खारिज करने के स्पीकर के फैसले पर मुहर लगाई। फिर बागी आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से शाम को एक बार फिर उन्हें मायूसी हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फ्लोर टेस्ट में जाने की मनाही करते हुए 12 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। स्टिंग मामले और सीबीआई जांच से विरोधी खेमा हरीश रावत को कमोबेश घेर ही चुका था, लेकिन अदालतों ने रावत खेमे को बड़ी राहत पहुंचा दी। पूरी रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
पिछले एक महीने में ये पांचवा मौका है जब कांग्रेसी खेमे में जश्न और उल्लास का माहौल बना है। कांग्रेसी खेमे को अब पक्का यकीन है कि कल सदन में उसके नेता हरीश रावत की जीत होगी। खुद हरीश रावत भी गदगद हैं।
आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और कल भी हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कोशिश की है, अपनी अर्जी लगा दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई भी हमारी व्यवहारिक कठिनाई को समझे और हमें वक्त देगी सर। और मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि मैं सीबीआई के सम्मुख हाजिर होऊंगा।
इधर कांग्रेस के नौ बागियों को करारा झटका लगा है, हालांकि वे इससे बेपरवाह यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुनिए बागी कांग्रेस विधायक शैलेंद्र सिंघल को।
ठीक है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई नेता कोई खत्म नहीं होता, नेता तो खत्म नहीं होता। कल को प्रोटेस्ट हो जाने दीजिए, उसका रिजल्ट शामिल दीजिए, उसके बाद जो भी है मिल बैठकर मीडिया बनाएंगे, तो ये राजनीति खत्म नहीं होगी।
इन बागियों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय भोगणा भी हैं। कांग्रेस का मानना है कि बागियों ने एक तरह से अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश नेता और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश।
संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, विधायक प्रक्रिया, ये यही थी। इन सब लोगों को मालूम है, ये लोग कोई नए नहीं है, सबको जानकारी नहीं है। तो ये सब हमारे पुराने साथी रहे, हमें कष्ट है कि आज ये दिन आया। हम इससे कोई बड़े खुश नहीं है, हमारे साथ जिन्होंने राजनीति की।
उधर बीजेपी अब यही कहती नजर आ रही है कि वो तो पहले से ही 62 विधायकों की संख्या के आधार पर शक्ति परीक्षण के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन उसका गणित तो गड़बड़ा गया। इससे इनकार करते हुए बीजेपी यही कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस विधायक उसके साथ होंगे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट।
कोई झटका नहीं है, वो सबको पता है कि अगर रात को दिन और दिन को रात भी स्पीकर कह देते हैं, इतनी अपरिमित ताकत होती है
जी,
उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है।
18 मार्च को हरीश रावत सरकार जब अपना बजट पास करा रही थी, कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। स्पीकर ने बजट को ध्वनिमत से पारित करार दिया। बीजेपी ने कहा हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई। राज्यपाल के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने 28 मार्च को सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने का आदेश दिया। इससे पहले 26 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और उसी दिन स्पीकर ने 9 कांग्रेसी बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। फिर बागी और बीजेपी इस मामले को नैनीताल हाईकोर्ट में ले गए। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फ्लोर टेस्ट की अनुमति दे दी। फिर बीजेपी और कांग्रेस के बागी इसे डबल बेंच में ले गए, वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी और रावत को एक बार फिर फ्लोर टेस्ट की अनुमति दे दी गई। यही नहीं, राष्ट्रपति शासन भी हटाने का आदेश हुआ और केंद्र सरकार को तीखी फटकार पड़ी। लेकिन बीजेपी, केंद्र सरकार और बागी फिर भी नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने भी अंततः फ्लोर टेस्ट का ही आदेश दिया। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की हाईकोर्ट की एकल बेंच में लंबित याचिका पर भी आज सुबह फैसला आ गया। इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और फ्लोर टेस्ट से बाहर रहने का आदेश दिया। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
तो कल देहरादून में होगा शक्ति परीक्षण और इस वक्त वहाँ किस तरह के हालात, किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियाँ दिख रही हैं, वो जानने के लिए चलते हैं देहरादून में हमारे सहयोगी शिव जोशी के पास। शिव, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि इस वक्त जो है किस तरह की हलचल और किस तरह की गहमागहमी, मतलब कह सकते हैं कि कयामत के पहले की ये आखिरी रात है।
जी बिल्कुल निखिल, और जाहिर है कांग्रेसी खेमे में एक बार फिर से उल्लास है और मना रहे हैं कि अब कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो कल का शक्ति परीक्षण एक बार फिर टल जाए। हालांकि अब ऐसी नौबत होने की आने की आशंका बहुत ही न्यूनतम है कि अब इस पर कोई रुकावट आने की संभावना बनती हो, लिहाजा कांग्रेसी खेमा बहुत खुश है और बीजेपी खेमे में मायूसी है। हालांकि रणनीति, आखिरी मौके की रणनीति दोनों खेमों में चल रही है। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद दिल्ली से आए हैं, जो पार्टी प्रभारी है उत्तराखंड की, अंबिका सोनी वो भी यहाँ पर है, विधायक कांग्रेस के विधायक और जो पीडीएफ जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वे सबके सब मसूरी के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं, वहां उनसे मुलाकात हो रही है और जिसे कहते हैं कि लास्ट मोमेंट की कोशिशें की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से सरकार के साथ रहना और शक्ति परीक्षण में पक्ष में वोट करना उनके लिए इस समय कितना जरूरी है और उत्तराखंड के लिए कितना।
शिव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो आंकड़ों के लिहाज से जो कांग्रेस का जो हरीश रावत वाला खेमा है वो कितना मजबूत है, जरा एक बार आंकड़ों के नजरिए से हमें बताइए।
जरूर निखिल, आंकड़ों की अगर हम जहां तक बात करें तो 9 बागी विधायकों के फ्लोर टेस्ट से हट जाने के बाद अब 62 की संख्या विधानसभा में रह गई है। 70 सीटों की विधानसभा थी, 62 अब रह गए हैं। 62 में से तो सीधे सीधे 27 विधायक बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी 27 हैं, लेकिन उसको 3 निर्दलीय, 3 बीएसपी, 2 बीएसपी और 1 यूकेडी विधायक का समर्थन भी हासिल है। और इसके अलावा जो निलंबित विधायक है बीजेपी के, भीमलाल आर्य, उसका भी समर्थन उसको हासिल है। इस तरह से उसके पास 34 विधायक ये हैं। इसके अलावा नामांकित सदस्य होता है वो, और अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा स्पीकर का वोट। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके पास कल की स्थिति के लिहाज से 62 सदस्यों के लिहाज से उसके पास बहुमत है। और ये बात लगभग साफ है कि उसे बहुमत साबित करने में हरीश रावत को कोई परेशानी नहीं आएगी। निखिल, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कल फ्लोर टेस्ट के लिए जो समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है वो 2 घंटे का है, 11 बजे से 1 बजे तक का। और इस 2 घंटे के दरमियान राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, और जो एजेंडे में, विधानसभा के एजेंडे में सिर्फ शक्ति परीक्षण ही रहेगा। और उसके बाद जो पर्यवेक्षक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त है वो उन नतीजों को लिफाफे में बंद कर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट में ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा। निखिल,
बहुत शुक्रिया देहरादून से शिव जोशी इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं बिहार का। बीते 2 दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए गया के छात्र आदित्य सचदेव हत्या मामले की गूंज आज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी। आज इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले। हालांकि अब तक मुख्य आरोपी रॉकी यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच मामले में अभियुक्त बनाए गए बिंदी यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन उनकी पत्नी मनोरमा यादव जो MLC हैं वो कह रही हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
गया शहर में शनिवार रात रोड रेज की एक कथित घटना में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी यादव अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रॉकी सत्ताधारी जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे हैं। जिला पुलिस ने रॉकी की तलाश में एक टीम दिल्ली भेजने का फैसला किया है। इस मामले में कल मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव और उनके सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह इन्हें पुलिस ने गया जिला अदालत में पेश किया। इस दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में बिंदी यादव ने कहा,
के पहले हमको बाहर रखते, हम बोले कि 24 घंटा हमको समय दीजिए, हम उसको खोज के लाके सिलेंडर कराते हैं। इन लोग बात प्रशासन के लोग नहीं माने, हमको मोबाइल से आखिर कहाँ बात करें उससे, हम तो क्या रॉकी सरेंडर करेगा, 100% सरेंडर करेगा।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रॉकी की मां मनोरमा देवी का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और राजनीतिक वजहों से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। इन सब के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अपने सरकारी आवास पर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा,
किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, और इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें न तो कोई ढिलाई है और न कोई कोताही है। तत्क्षण और तत्काल कार्रवाई हो रही है, और कोई कितना दिन भाग करके कहां जाएगा, चारों तरफ छापा पड़ रहा।
इस हत्याकांड की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में यह मामला अश्विनी चौबे, पप्पू यादव जैसे सांसदों ने उठाया। घटना के विरोध में NDA ने आज गया बंद का भी ऐलान किया था। बंद की अगुवाई कर रहे स्थानीय विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार को पुलिस ने समर्थकों के साथ गिरफ्तार भी किया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ यह बंद शांतिपूर्ण रहा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस घटना के बारे में कहा,
पूरे प्रदेश की छवि शर्मसार हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। और नीतीश कुमार जी, आपसे मेरी अपील है कि प्रधानमंत्री का ख्वाब और देश के नेता बनने का ख्वाब आपके ऊपर है, आप उसको पालिए, लेकिन पहले बिहार को बचाइए और बिहार को ठीक करिए।
राज्य सरकार पर आरोप लगाने वालों में दूसरे दलों के नेता भी शामिल हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मनीष चांडिल, BBC पटना।
खबर सच है अगर BBC पर है।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और अब आइए रुख करते हैं दिल्ली का। प्रधानमंत्री मोदी की BA और MA की डिग्रियों का विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। आज दिल्ली में BJP अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री की MA और BA की डिग्रियां लोगों के सामने रखी और आम आदमी पार्टी से कहा कि वो माफी मांगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने माफी मांगने की बजाय बीजेपी की ओर से जारी की गई प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्रियों को फर्जी और नकली बताया है। पूरा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को जारी किया और डिग्री विवाद पर लगाम लगाने की कोशिश की। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली है। अमित शाह ने पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री की कॉपियां पत्रकारों को बांटी।
केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया?
संवाददाता सम्मेलन में मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की परीक्षा दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रहकर दी थी और पीएम पर सवाल खड़ा करने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की।
सार्वजनिक जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है, जिन्होंने ये विषय उठाया है वो उस स्तर तक गए हैं।
इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और भाजपा की ओर से जारी की गई प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्रियों को फर्जी और नकली करार दिया।
आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना चाहती है कि जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है, फोर्ज्ड है। अमित शाह कोई भगवान नहीं है, अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है कि कुछ डिग्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके रख देंगे और उसको देश की जनता और आम आदमी पार्टी और तमाम लोग ये मान लेंगे कि वो डिग्री सच है।
आप नेता आशुतोष ने कहा कि प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्रियों में दर्ज नाम में अंतर है। आशुतोष ने कहा कि प्रधानमंत्री के बीए के अंक पत्र और डिग्री में परीक्षा का साल अलग अलग है। उन्होंने कहा कि अंक पत्र में साल 1977 और डिग्री में 1978 दर्ज है।
इस डिग्री पे लिखा हुआ है नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, ये उनकी मार्कशीट है और ये है उनकी एमए की डिग्री। जरा नाम पे गौर फरमाइएगा, नाम लिखा हुआ है नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी।
प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सवाल उठाए थे और उनकी पार्टी के रुख को देखकर लगता नहीं कि ये विवाद अभी थमेगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी बड़े जोशो खरोश में है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस बारे में कोई उत्साह नहीं दिखा रही है। आखिर क्या है इसकी वजह? कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद से जब मैंने ये सवाल किया तो उनका जवाब था,
नहीं आपने कल ही के अखबारों में देखिए, हम लोगों ने बहुत साफ कहा है कि प्रधानमंत्री के डिग्री के मामले में जो कंफ्यूजन है उसको उनको दूर करना।
कल के अखबार की बात कर रहे हैं आप, आज जो है उन्होंने सफाई दी, अपनी डिग्री पेश की और उस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया तुरंत आ गई, उन लोगों ने लपक लिया, लेकिन आपकी पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
नहीं, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या हुई है वो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन बहुत दिनों से पहले से हम लोगों ने ये बात कहे हुए है। मैं ट्विटर पे हूँ, मेरा आप ट्विटर अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ।
लेकिन शकील साहब, इस मुद्दे पर जो गर्मजोशी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है।
प्रधानमंत्री को डिग्री के मामले में कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, इसलिए कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने गलत रूप से इलेक्शन कमीशन को दिया है और इसी गलत डिग्री के मामले में आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर जेल जा चुके हैं, उन पर मुकदमा।
नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई। आज जो उन्होंने डिग्री पेश की, संवाददाता सम्मेलन किया, उसके बाद से कहीं कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रमुख विपक्षी दल आप नहीं आम आदमी पार्टी हो गई है, ऐसा क्यों लग रहा है?
उसको पूरी तरह देख नहीं लिया जाए, जब तक उसको पूरी तरह परख नहीं लिया जाए। और कल ही हम लोगों ने कहा था, और हम ही लोग के कहने की वजह से, केजरीवाल जी तो बहुत दिन से हंगामा कर रहे थे इसलिए कि उनके पार्टी के एक मिनिस्टर जाली डिग्री के मामले में जेल गए थे। कल ही हम लोगों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने डिग्री के मामले को साफ करना चाहिए और देश को ये जानने का हक है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने जाली डिग्री के सहारे देश को गुमराह करने
की। अभी क्या स्टैंड है आपका, ये जो आज पेश की गई है डिग्री
है, आज ही उन्होंने दिया है और आज जब उन्होंने दिया है तो लोग उसको एग्जामिन करेंगे कि इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलत बातें हैं, तो उसके बाद हम 130 साल हम केजरीवाल साहब की जुमा जुमा 8 दिन की पार्टी नहीं ना है।
शकील साहब, लेकिन इस बात को आप समझिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से केंद्र सरकार की आलोचनाओं में मुखर हो रही है, वो रुख कांग्रेस का नहीं दिख रहा है, क्या ये अगस्ता वेस्टलैंड की वजह से हो रहा है?
देखिए, केंद्र सरकार के मामले में आम आदमी पार्टी की हैसियत बहुत छोटी है, दिल्ली की वो सरकार में है और दिल्ली में रहने की वजह से उनकी आवाज थोड़ा नेशनल चैनलों में ज्यादा हो जाती है, पूरे मुल्क में हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी उन्होंने दो दो सरकारों को डिसमिस किया, आज हम सब लोगों की नजर थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसके बाद हम लोग एक डेलीगेशन लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को दोनों को थ्रेट मिला, धमकी मिली है उनके तमिलनाडु और केरल के टूर में, तो एक डेलीगेशन के साथ हम लोग होम मिनिस्टर के यहाँ गए थे, तो हमारा पूरे हिंदुस्तान में चुके हम केजरीवाल साहब को चुके दिल्ली में, और दिल्ली के में उन्होंने अपने जिम्मे कोई काम नहीं रखा है, उनकी नजर पंजाब के इलेक्शन पर है।
कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद। और अब बारी है आपके शिकवे के लिए तारीफ और सुझावों का पुलंदा, यानी आपकी चिट्ठियां, जिसे लेकर हाजिर हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और
वंदना।
वंदना जी के पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं। वंदना जी, आप, मुझे लगता है कि काफी दिनों बाद आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई हैं।
दो तीन हफ्ते हो गए हैं
तो श्रोताओं को बहुत बेसब्री से आपकी आवाज का इंतजार रहा होगा। बताइए कौन सी चिट्ठी
है। सबसे पहले ये चिट्ठी है ग्राम पोस्ट सिपाहिया दुबे टोला, जिला है गोपालगंज बिहार, जालेश्वर तिवारी साहब। ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव में बीबीसी हिंदी सेवा की तरफ से जो समाचार सुनाए गए, वो उसमें लगता है सलमान रावी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
एकदम लगाया है, बिल्कुल सही बात है।
और ये इनका कहना है कि एकदम उनको 52.5 लाख धन्यवाद। बिल्कुल
52.5 लाख धन्यवाद, अरे बापरे, गिनते गिनते थक जाएंगे हम तो साहब।
और कार्यक्रम को कहा है कि 56 छुरी था।
56 छुरी कार्यक्रम, अरे क्या बात है, आपने तो ऐसा बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ये जुमला मुहावरा जो भी कहे वो इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये कार्यक्रम पसंद आया
जी। ये दूसरी चिट्ठी है संजय कुमार सुमन से, इन्होंने बिहार से ही लिखा है। इनका कहना है
बिहार में किस जगह से लिखा है, कुछ लिखा
बिहार से, पहाड़पुर,
पहाड़पुर बिहार से।
ये कहते हैं कि समाचार जो सुनते हैं बीबीसी में उनमें बिहार उत्तर प्रदेश के श्रोता ज्यादा होते हैं, तो पहले की तरह वहाँ के श्रोताओं पर ध्यान दिया करें।
हाँ, लेकिन ये शिकायत तो अब इनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से समीर आत्मज मिश्र और बिहार से बहुत सारे संवाददाता रिपोर्ट भेजते हैं, फीचर भी भेजते हैं और हम लगातार कवर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। ये चिट्ठी है मदन मिश्र की धुले महाराष्ट्र से। इन्होंने कहा कि दिन भर में बलराज मधोक के निधन की वार्ता रेडियो पर सुनी, सुनकर बहुत दुख हुआ। जनसंघ की नींव के वो पत्थर थे और उन्होंने अपने परिश्रम से जनसंघ के पौधे को सींचा था।
सींचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्र जी। जनसंघ को बढ़ाने में बलराज मधोक के योगदान को सभी लोग मानते हैं, तो आपने ये कार्यक्रम सुना, धन्यवाद।
और बहुत सारी जो ईमेल आई हैं वो विवेचना पर आई हैं।
जी, रेहान फजल की विवेचना जो इंदिरा गांधी पर
हुई
थी। जी जी, क्या कहते हैं हमारे श्रोता।
बेगूसराय तरैया से मोहम्मद जीशान नैयर लिखते हैं कि इंदिरा गांधी पर वैसे तो कई बार विवेचना सुनी है, पर इस बार की विवेचना एकदम अलग थी और इनकी फरमाइश भी है कि पंडित नेहरू, मौलाना आजाद पर भी विवेचना सुनाई जाए।
भाई जीशान भाई, हम तो यही कह सकते हैं कि आप गौर से लगातार कार्यक्रम सुनते रहें, कभी पंडित नेहरू पर भी विवेचना होगी और दूसरे जो आपने मौलाना आजाद का नाम लिया, हम उन पर भी कोशिश करेंगे कि विवेचना हो।
जी, और ये जंग बहादुर सिंह जो हमारे नियमित श्रोता है जमशेदपुर से, उनका कहना है कि डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुरब ने इंदिरा गांधी को जो शालीन और आम इंसान की तरह पेश किया, दरअसल उतनी सरल महिला वो थी नहीं। इन्होंने लिखा है कि चूंकि माथुर जी उनके निजी चिकित्सक थे, इसलिए उनके साथ एक ही तरह से खाना टेबल पर अपनी प्लेट से निकाल के देना वो उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन वो जिद्दी किस्म के एक उनका व्यक्तित्व था और इसके चलते भारतीय लोकतंत्र में एक काला धब्बा हमेशा।
ये इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं जंग बहादुर सिंह जी। जी हाँ, रेहान फजल ने उनके व्यक्तित्व के एक पहलू को उनके डॉक्टर की नजरों से पेश किया था और वही उसका मकसद भी था।
जी, और अजय कुमार कैथवली बलिया उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, उन्होंने भी तारीफ की है विवेचना की, लेकिन साथ ही कहा है कि बीबीसी में चिट्ठी शामिल करवाना हो तो थोड़ी सी बीबीसी की आलोचना कर दीजिए, क्योंकि आलोचना वाली चिट्ठी प्रस्तुतकर्ता दौड़कर उठाते हैं।
ये सीधे इशारा हमारी तरफ है कि आलोचना की जाए तो उसको तेजी से हम लोग कार्यक्रम में शामिल करते हैं। दरअसल कबीर दास जी बहुत पहले कह गए थे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
जैसे अगला ही जो ईमेल है वो उन्होंने एक तरह से आलोचना की है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार यादव लिखा है कि हंसराज हंस से बातचीत सुनाई गई वो तो ठीक था लेकिन पीछे से कुछ गाने की आवाज लगातार आ रही थी जिससे सुनने में उनको दिक्कत हुई।
तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट वेव पे इनको अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ा और हंसराज हंस के जो इंटरव्यू चला था उसके साथ साथ हो सकता है किसी और रेडियो स्टेशन की तरफ से डिस्टर्बेंस हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
जी, इंडिया बोल पर एक ईमेल आया है अनिल शुक्ल का, उनका कहना है
ये कहां से लिखा है इन्होंने, नहीं मुझे लगता है कि शायद इलाहाबाद के हमारे श्रोता हैं अगर मैं सही याद कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूं।
जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि इस बार कार्यक्रम में कांग्रेस के शकील अख्तर और सोनिया गांधी पर किताब लिखने वाले पत्रकार राशिद किदवई को बुलाया गया, बीजेपी के विचारों को जगह नहीं दी गई, ये इनकी आलोचना है। कहते हैं कि कहीं सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाकर देखिए तो फिर।
हाँ, ये बात इनकी बात सही है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी उस कार्यक्रम में होते तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखते। लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो सुब्रमण्यम स्वामी को हमने अलग से बुला करके उनका अलग से इंटरव्यू किया है और प्रसारित हुआ है तमाम रेडियो कार्यक्रमों में।
जी बिल्कुल, और ये एक सुझाव है सुहेल अख्तर, ग्राम बरही, जिला हजारीबाग, झारखंड से, ये कहते हैं कि मार्कंडे कारजू का इंटरव्यू नहीं सुनाया गया कभी बीबीसी पर, तो
जी इंतजार कीजिए भाई, इंतजार कीजिए, अगर मार्कंडे कारजू उपलब्ध होंगे तो उनका इंटरव्यू भी हम सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत वक्त हो गया है, अब हम बाकी जो चिट्ठियां आपके पास में देख रहा हूं, एक लिफाफे में चिट्ठी आई है, इसको अगले हफ्ते के लिए रखते हैं। फिलहाल मैं श्रोताओं से इजाजत चाहता हूं, अपना पता बताता हूं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
तो ये थी आपकी चिट्ठियां जिसे प्रस्तुत कर रहे थे राजेश जोशी और वंदना। अगर आपने अब तक चिट्ठी नहीं लिखी है तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कलम उठाइए। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल समाचार, आदेश कुमार गुप्ता आ चुके हैं खेल समाचारों के साथ। अब जी आदेश जी, बताइए क्या है आज।
जी देखिए, अगर टेनिस की बात की जाए तो बैटेड ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब कल शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया। दरअसल कल देर रात ये मुकाबला समाप्त हुआ, फाइनल में उन्होंने दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे को कड़े संघर्ष के बाद 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। नोवाक जोकोविच का ये 29वां मास्टर्स खिताब रहा। इसी बीच ATP की ताज़ा विश्व रैंकिंग में भारत के रोहन बोपन्ना पुरुष युगल रैंकिंग में 2 पायदान खिसक कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहन बोपन्ना कल ही अपने जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्चे के साथ खेलते हुए मैड्रिड ओपन के पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में हार गए, जिससे उन्हें 90 रेटिंग अंकों का नुकसान हुआ और ये नुकसान उन्हें रियो से दूर भी कर सकता है। लेकिन अभी काफ़ी टूर्नामेंट है जहां उन्हें अपनी रैंकिंग सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन पुरुष युगल वर्ग में लिएंडर पेस की रैंकिंग में सुधार हुआ है और वो 3 पायदान के लाभ के साथ 54वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वैसे लिएंडर पेस ने काफ़ी दिनों बाद खुलकर अपने हाथ दिखाते हुए कल अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के सैम ग्रोथ के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में खेले गए ATP चैलेंजर में थाईलैंड के सांचई रतिवताना और सोनचात रतिवताना की जोड़ी को 4-6, 6-1, 10-7 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। और अगर महिला की युगल वर्ग की रैंकिंग की बात की जाए तो पहले ही तरह यानी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस नंबर 1 पर बनी हुई हैं, तो उन्होंने अपने स्थान को बरकरार रखा है और दोनों के एक समान 12,045 अंक हैं। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम की हार का सिलसिला थम नहीं रहा है, आज वो मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी। लेकिन इससे पहले कल खेले गए चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से हराया। और उधर IPL में आज केवल एक ही मुकाबला है जहां थोड़ी ही देर बाद मोहाली में किंग्स 11 पंजाब अपने ही घर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना करेगी।
इस मैच का हाल हम सुनेंगे आपसे दूसरे कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है तो सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तराखंड विधानसभा में कल होने वाले शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक वोट नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की ओर से दाखिल याचिका पर आज अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में अभियान चला रहे लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूरोप नेटो की वजह से सुरक्षित है, यूरोपीय यूनियन के कारण नहीं। उत्तर कोरिया से निकाले गए बीबीसी संवाददाताओं की एक टीम चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गई है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं। पार्टी की 36 साल बाद हो रही कांग्रेस में इस फैसले की जानकारी दी गई। ऑस्ट्रिया के चांसलर वर्नर फेमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं तिलक भाटिया। दिन भर में आज इतना ही। घटना चक्र में डेढ़ घंटे बाद दोबारा मुलाकात होगी। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।